તારીખ 1 1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 469 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 102
શ્રી કૃષ્ણ આદિ કી ક્રિયા ઉદાસીન જૈસી થી તીન ખંડ કે અધિપતિ હોને પર થી ઉદાસીન અવસ્થા નહીં રહેતો છે, એ એની અંતરંગ અવસ્થા છે. બહાર મેં કુછ ભી દિખે વૈભવ રાત ખાત, કિંતુ એની જો દશા થઈ ઉદાસીન જૈસી ક્રિયા થી. જિસ જીવ કો સમ્યક્ત ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઉસે સર્વ પ્રકાર કે સાંસારિક ક્રિયા ઉસી સમય ન હો એસા કોઈ સિદ્ધાંત નહીં હૈ, નિયમ નહીં હૈ. ક્રિયા સમ્યક્ત હો જાય તો ઉસકો સંસાર કે સબ ક્રિયાએ મિટ જાય, હવે હી નહીં. એસા કેવલ જ્ઞાન મેં હોતા હૈ, કેવલ જ્ઞાન મેં ઓર સંસાર. કેવલ જ્ઞાન હોતે હી સભી પ્રકાર કે ઉદય શાંત હો જાતે હૈ સંસાર કે. પરીક્ષા ઉત્સર્ગ હોતે હૈ તો વો ભી શાંત હો જાતે હૈ, કેવલ જ્ઞાન મેં નહીં રહેતા. એસી બાત. લેકિન સમ્યક્ત્વ મેં એસા સિદ્ધાંત યા નિયમ નહીં હૈ. સમ્યક્ત્વ હોવે તો પૂર્વ કર્મ કા ઉદય મિટ જાવે એસા નહીં બનતા. પૂર્વ કર્મ કા ઉદય વૈસા કે વૈસા ચાલુ રહેતા હૈ, ભીતર મેં સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ. સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન હોને કે બાદ સંસારી ક્રિયા રસ રહિત પણે હોને સંભવિત હૈ. બહાર મેં ફરક નહીં પડતા હૈ, જો ફરક પડતા હૈ અંદર મેં ફરક પડતા હૈ. કે બહાર કા ઉદય વૈસા કા વૈસા, અંદર મેં રસ જો હૈ છૂટ જાતા હૈ. રસ છૂટને કા કારણ અપનત્વ છૂટ ગયા વો હૈ. જૈસે હમ દ્રષ્ટાંત લેતે હૈ ના, કે દો લડકા ખેલતા હૈ તો માં કો અપને લડકે મેં રસ હૈ, પડોસ મેં સે આયા હૈ ઉસમે કોઈ રસ નહીં હૈ. લડકા તો દોનો લડકા હૈ, પર અપને સે કોઈ અચ્છા ભી હોગા સુંદર ભી હોગા, લેકિન રસ કિસમે હૈ, અપના હૈ ઉસમે રસ હૈ. એસે સમ્યક્ત્વ હોને સે અપનત્વ છૂટ ગયા હૈ. મેં પહેલે ઉસમે અપનત્વ છોડને કા પુરુષાર્થ કિયા થા, ફળ સ્વરૂપ અપનત્વ છૂટ ગયા. અપને સ્વરૂપ મેં અનુભવ પૂર્વક અપનત્વ હો ગયા, બહાર સે અપનત્વ છૂટ ગયા, તો રસ ભી છૂટ ગયા. જો કુછ મેરા નહીં હૈ ઉસમે મેરે ક્યા રસ હૈ, મુજે ક્યા રસ હૈ. સબ જ્ઞાન કા જ્ઞેય હૈ, મેં જ્ઞાન માત્ર હું. સાવધાન, ઇસમે જ્ઞાન માત્ર મેં હું, અપને જ્ઞાન માત્ર સ્વરૂપ મેં. સાવધાન, ઓર સબ જ્ઞેય હૈ જો ભી હો. ઇસલિયે સંમિત ઉત્પન્ન હોને કે બાદ સંસાર કી ક્રિયા રસ રહિત પણે હોની સંભવિત હૈ. પ્રાય એસી કોઈ ભી ક્રિયા ઇસ જીવ કો નહીં હોતી કે જિસસે પરમાર્થ મેં ભ્રાંતિ હો જાય. એસી કોઈ ક્રિયા નહીં હોતી કે પરમાર્થ મેં ભ્રાંતિ હો જાય. એસી ક્રિયા નહીં હોતી બહાર મેં, જૈસે કે દેવગુરુ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધતા હો જાય. એસી બાહ્ય મેં ક્રિયા નહીં હોતી, પરમાર્થ મેં ભી ભ્રાંતિ હો જાય. કઈ લોક દ્રષ્ટાંત દેતે હૈ કે ભરત બાહુબલી દોનો ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ ચરમ શરીરી સગે ભાઈ થે. બહાર મેં સાંસારિક અવસ્થા મેં સગે ભાઈ થે, અંદર મેં દોનો કી દશા કૈસી થી કે જ્ઞાન દશા થી. ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ થે ફિર ભી લડાઈ હુઈ. લડાઈ राज के विषय में अवश्य थी लेकिन धर्म के विषय में नहीं थी। क्या ये हो सकता है? राज के विषय में भरत चक्रवर्ती को छखंड का अधिपति होने का विकल्प रहता है, तो छखंड में कोई भी इसकी सत्ता के नीचे नहीं हो वो बात नहीं चलती। और उनको ये हुआ कि जब मैं भी ताकत वाला हूँ तो चक्रवर्ती हो तो क्या हो गया, मेरा बाहुबल इतना है कि कोई मुझे नहीं हरा सकता इस संसार में। चक्रवर्ती हो तो चक्रवर्ती, वो मेरे से क्या लेना देना है, और मेरे को जो मिला है वो तो पिताजी के वर्ष से मिला है। तो राज की संपत्ति मिली है तो मुझे मेरे पिताजी के ओर से मिली है, इसमें उनको ऐसा नहीं रखना चाहिए कि तुम भी मेरे अंदर में आ जा। अगर लड़ाई से वो अंदर में ले सकता है तो आ जाए मेरे सामने। तो दुश्मनावट से लड़ाई नहीं किया था लेकिन वो अपनी ताकत पर उनको भरोसा था, उनको अपने पुण्य पर भरोसा था, लेकिन धार्मिक लड़ाई नहीं होती।
दैहिक ताकत का प्रदर्शन करने का भाव आ गया,
उसको दैहिक ताकत का प्रदर्शन का भाव आया, उनको पुण्य का प्रदर्शन का भाव आया। आपस में कोई दुश्मनावट नहीं थे, मेरे दुश्मन है मार डालो ऐसी कोई बात नहीं थी, थे तो मैं। और उसमें कोई पारमार्थिक क्षेत्र में विचार भेद नहीं था, पारमार्थिक तत्व में कोई विचार भेद नहीं था, उसकी कोई टकरावट नहीं थे, इस प्रकार का उदय नहीं होता है धार्मिक क्षेत्र में। ज्ञानी ज्ञानी के बीच ऐसा कभी नहीं होता है, ज्ञानी मुमुक्ष के बीच ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसी बात है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी कोई भी क्रिया उस जीव को नहीं होती है,
तात्विक मतभेद भी नहीं रहता है, तात्विक मतभेद भी नहीं रहता,
तात्विक मतभेद नहीं रहता है, देवगुरु शास्त्र संबंधित सिद्धांत संबंधित कोई मतभेद नहीं रहता। दोनों का अनंत ज्ञानियों का एक मत है, दो का नहीं। गाथा सन कृपाल देवी तो गाथा सन त्याग ज्ञानी थे या वर्तमान में हो था काल भविष्य में मार्ग भेद
नहीं,
कोई भेद न पड़े तरण काल में। इसलिए ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है कि जिससे परमार्थ के विषय में भ्रांति हो जाए, किसी को शंका पड़े, ऐसा क्रिया ही क्यों करता है, ऐसा कभी नहीं बनेगा। और जब तक परमार्थ में भ्रांति नहीं होती, परमार्थ के विषय में भ्रांति नहीं होती, तब तक दूसरी क्रिया से सम्यक्त्व को बाध नहीं होता। फिर ये लड़ाई की हो, रोने की हो, हंसने की हो, खाने की हो, पीने की हो, बोलने कुछ भी हो, दूसरी क्रिया से सम्यक्त्व को बाध नहीं होता है।
इससे ज्यादा तो
रामचंद्र जी वाला बहुत कड़क है, वो तो अभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सके। रामचंद्र जी ने 6 महीना तक लक्ष्मण जी के देह को कांधे पे रखकर उसको खिलाने की पिलाने की स्नान कराने की जो भी चेष्टा की है पागलपन जैसा लगा, लेकिन अंतर में वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थी, बहुत विचक्षण पुरुष थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे उतने ही नहीं, बाहर के क्षेत्रों में इतने विचक्षण थे कि संसार का कोई कला इसको नहीं आती थी ऐसा नहीं था। बहुत कला बोली जाती है, बहुत कला उसको आती थी। ऐसा आता है पद्म पुराण में कि एक जगह उन्होंने स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया और ऐसा अभिनय किया कि अच्छे अच्छे राजा महाराजा मोहित हो गए। अरे ये कोई नृत्यांगना है, कोई कहाँ से आई, कोई ऊपर से तो नहीं आई देवलोक से, ऐसा नृत्य कला में भी ऐसा, और बाण चलाने में भी ऐसा, और कोई कुम्हार का बर्तन मिट्टी का बनाने तो कैसा भी बना दे, कोई शिल्प कला बोले तो कैसे भी मूर्ति गढ़ दे, कोई कला बाकी बहुत कला उसको आती थी, उतनी विद्या साधित गया था। यंत्र तंत्र जंत्र सब सब के सब कोई बाकी नहीं।
सीता जी धर्मात्मा और पवित्र है इसी ध्यान में होते हुए भी उसको
इसको त्याग कर दिया क्या कर खो बैठे थे
तीर्थ यात्रा के बहाने से
वो भी माया कर किया था छल कपट किया था इसलिए उतने विचक्षण थे कि आज हजारों साल के बाद उनको पुरुषोत्तम पुरुष के नाम से आज भी लोग पहचानते हैं। रामचंद्र जी कैसे थे कि एक पुरुषोत्तम पुरुष थे, पुरुषों में भी उत्तम पुरुष थे ऐसा आज भी लोग मानते हैं। इतना अच्छा इंप्रेशन रह गया है। देखिए उनका जो समकाल है विश्वनाथ तीर्थंकर वाला है मुनि सुव्रत नाथ के समकाल में वो है
1 लाख 1 लाख
आज भी 1 लाख साल बाद के भी लोग पुरुषोत्तम पुरुष ढूंढते नहीं है। इतनी लोकप्रियता इतनी गुडविल चारित्रों की बाह्य क्रिया ऐसी थी। सीता जी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं आया था न तो उनकी धर्मदशा की भी शंका थी उनको न तो उनके चारित्र की शील की पवित्रता की के विषय में भी कोई शंका थी दो में से एक भी बात नहीं थी वो बात नहीं थी इसमें फिर भी क्या कर दिया तो कर दिया।
तो क्या समझना चारित्र मौका
चारित्र मौका एक चारित्र मौका प्रकार अवश्य है व्यवहार अनिति भी है व्यवहार अनिति भी है
लोक संज्ञा
नहीं थी लोक संज्ञा ज्ञानी को होती है ज्ञानी को नहीं होती है।
गांधी जी लिखे थे कि पिता लोग क्यों त्याग करे कि जिन्हें विद्यालय पर प्रिय थी इन लोग त्याग करे इनके आप त्याग मारो साथी होते हैं इनके तो फिर गांधी जी लिखे थे पद्म पुराण या अमित
आचार्य ना लिखे लोग पद्म पुराण आचार्य ना लिखे राम राज्य को एक आदर्श राज्य उनको बताने का था और इस राज का राजा भी उतना आदर्श था कि कोई इनके नाम से कोई कलंक प्रचलित हो जाए ऐसा वो होने नहीं देते और इसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ये इसकी एक आइडियोलॉजी थी उसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसे प्रसंगों से इनके ज्ञान दशा में शंका होने योग्य नहीं है करने योग्य नहीं है ऐसी बात है। इसलिए दूसरी कोई भी क्रिया से सम्यक्त को बाध नहीं होता है। सर्प को इस जगत में लोग पूजते हैं यह वास्तविक रूप से पूज्य बुद्धि से पूजते नहीं है परंतु भय से पूजते हैं भाव से पूजते नहीं है। ये तो खुली बात है। नाग पांचम आती है तो नमस्कार करते हैं हमारे वैष्णव में जैन में तो नहीं हो जैन में नाग पूजा नहीं हो वैष्णव में पानी आ रहा है पानी जहाँ रखते हैं ना गोला घी का दीवा रख करके अगरबत्ती वगैरह रख करके जा करते हैं नाग बापा मेहरबानी कर दो कोई भी दर्शन पर देता
नहीं
भाई भूले चुके दर्शन देसो तो लाकड़ी ने सार सबे लेवा पड़से लोग भय से नहीं पूछते भाव से पूछते नहीं है। और इष्ट देव को लोग अत्यंत भाव से पूजते हैं तो पूजा तो पूजा की क्रिया तो दोनों की हुई भगवान को भी पूजते हैं और नाग को भी पूजते हैं। तो क्रिया एक सी हुई, भाव एक सा है क्या?
नहीं,
तो भगवान के प्रति पूज्य भाव है और नाग के प्रति अपूज्य भाव है, भय है। हाँ बेशक चलिए, चोखो व्यस्त। एक पुण्य भाव है, एक पाप भाव है, ठीक ही ऐसी बात है। वो तो दृष्टांत दिया है कृपा गुरु ने। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव वह संसार को भजता दिखने में आया है, संसार का भजन करता है, दुकान पे जाता है, गृहस्थी चलाता है, रात चलाता है, कैसे नागदेव का देवता समझ करके। ये काला नाग है, सावधान रहना है, बस जाएगा तो मर जाऊंगा, उसको इस तरह से संसार को देखता है। इस तरह सम्यक दृष्टि जीव भी संसार को भजता देखने में आया आता है, वह पूर्व निबंधन किए हुए प्रारब्ध कर्म से दिखता है। ये इनका पूर्व कर्म क्या था, कैसा था, वहां पर दर्शित होता है। इस प्रकार का इसका पुण्य कर्म था या पाप कर्म था या जो भी उदय है, वो पूर्व कर्म को सूचित करता है। वास्तव्यपने से, वास्तविक रूप से, भाव से, अपने भाव से, अपने रस से, वह संसार में उसका प्रतिबंध घटित नहीं होता, नहीं घटता। अपने भाव से वो संसार में प्रतिबंधक भाव से, अपना भाव प्रतिबंध हो जाए उस तरह से वो संसार में रहता नहीं। पूर्व कर्म का उदय रूप भय से घटित होता है, वो पूर्व कर्म का उदय समझता है और उदय में सावधान है। नाग के साथ रहता है, खेलता है, सावधान होकर के बराबर सावधान है उसमें, मालूम है कि मैं गफलत में रह जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मैं जागृत हूँ, सावधान हूँ, निरंतर अभी कोई प्रतिबंधक भाव से मुझे मेरा परिणाम होने लायक नहीं है, होने योग्य नहीं है। जितने अंश में भाव प्रतिबंध न हो उतने अंश में ही साधक पड़ा उस जीव को होता है, उतने अंश में साधक पड़ा लिया जाता है। यह सम्यक दृष्टि पड़ा लिखा है, लेकिन वो साधक पड़ा के उसने, क्योंकि सम्यक दृष्टि अधूरा नहीं होता, इतने अंश में सम्यक दृष्टि, उतने अंश में मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं होता है, भाव साधक पड़ा। देखो नहीं समझ में आ रहे तो तकलीफ हो जाए कि जितने अंश में भाव प्रतिबंध न हो तेटले अंश सम्यक दृष्टिकोण होते जीव न हो, देखे सम्यक दृष्टिपणा में अंश नहीं, साधकपणा में अंश में अंश
चारित्रम।
हाँ बेटा सत्पुरुष ने सान्निध्य में शास्त्र वाचन એટલા માટે સત્પુરુષ ના સાનિધ્યમાં શાસ્ત્ર વાંચવાની
આજ્ઞા ગડબડ હોય જાવે, વો તો ક્યા હૈ, યે તો મેડિકલ સ્ટોર હૈ, શાસ્ત્ર ક્યા હૈ, મેડિકલ સ્ટોર હૈ, બહુ સી દવાઈયા હૈ, કિતને થોડી નહીં હૈ, બહુ સી દવાઈયા હૈ। અબ હમ પૂરા શાસ્ત્ર પઢતે હૈ તો કોઈ મેડિકલ સ્ટોર કી સબ દવાઈયા પી જાય તો ક્યા હોગા, पूरी सब सारा मेडिकल स्टोर के दवा पीने लगे, पीछे एक पीछे एक बोतल खाली करने लगे तो क्या हो जाए, मर जाए। वो तो दवाई खाने से मरता है, हाँ दवाई खाने से भी मरता है, और वैद्य तो जहर खाने से भी मरता
नहीं
है, तो पॉइजनस दवा लिख देते हैं, डॉक्टर खा लेते हैं, तो कुछ नहीं होता। ये तो मेडिकल स्टोर है, कौन सी दवा मुझे लेने योग्य है, कौन सी दवाई मुझे नहीं लेने योग्य है, वो तो ज्ञानी पुरुष जानते हैं, स्त्री गुरु जानते हैं, दूसरे अपना उसमें कोई पेशेंट का अधिकार
नहीं
है।
तुमने अच्छी ली है, मेडिकल
स्टोर,
तुमने अच्छी ली,
हाँ संज्ञा मेडिकल स्टोर की संज्ञा है, बहुत सी दवाई है। एक दर्दी को सभी दवा पिलाई नहीं जाती, दी नहीं जाती, और एक दवा सभी दर्दी को भी दी नहीं जाती, ऐसी परिस्थिति है वास्तविक में।
पैराग्राफ चाहिए आगे तो मुमुक्षु जीव ने ग्रहण करवा योग्य है।
ठीक है, मुमुक्षु जीव ने वो ग्रहण करवा योग्य है कि ज्ञानी पुरुष की बाह्य उदय की परिस्थिति देख करके उसका अंतरंग दशा का नाप नहीं निकलेगा। जैसे श्री कृष्ण आदित्य तो तीन खंड के अधिपति थे, 16108 तो रानियाँ थी उसका, इतना सोने की द्वारका थे, सोने के महल थे, सोने के जी मंदिर थे, एक महल में एक रानी को रहना, बाद में इसका जिन मंदिर अलग था, एक की पूजा में दूसरा का बोलने में कोई दखल नहीं हो गए ऐसा उतना वैभव था। पूरी द्वारका सोने की बनाई थी, देवों ने बनाई थी। वो थे वृंदावन में खेलते थे बचपन में, वो देख गया था, कंस मार डालता था, बहन के सभी लड़का को मार डालता था, वो भी पुत्र पुत्री जो कुछ हो उसको मार डालता था, क्योंकि उसने मार सुन लिया था भगवान की वाणी में कि तेरा मौत तेरे भांजे से होगा, तो भांजे को ही खत्म करना है उनको, तो फिर बदली करके वृंदावन में भेज दिया था और देवकी के वहाँ उसका उच्छेद था। जब वो युवान हुए तब देव लोग आए ऊपर से, महाराज आप तो तीन लोग के अधिपति हैं, वासुदेव पुरुष हैं, आपके लिए सोने के द्वारका तैयार है, बना लिया है, उसको कुछ परिश्रम करके संपत्ति लेना नहीं पड़े, तो देवी संपत्ति आती है उनकी, उनकी सेवा में देव लोग भी आते हैं। फिर उन्होंने ऐसा है पुण्य का उदय होता है, तो हमको भी पुण्य का उदय होता है, तो वहाँ तक तो ग्वालों के साथ वो खेलते रहे, वो भी
सम्यक्तों ने बड़ा खाना प्रयत्न करेंगे। हाँ,
सम्यक् दशा क्या होती है उसको पहचान करने का प्रयास करना, अपनी योग्यता बनाना, प्रयास करना मैंने अपनी योग्यता को बनाना, प्रयास करना मैंने बुद्धि लगानी हो बात नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं कहेंगे आगे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। सुभाष भाई को चिट्ठी लिखते हैं, 26 की साल है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ सम्यक के सिवा जाने का अभाव होने का संभवत नहीं है। सम्यक होने पर ही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग जाता है, इसके पहले किसी को नहीं जाता। ऐसा जो कहने में आया है यह यथार्थ है। संसार के पदार्थों में जीव को तीव्र स्नेह बिना ऐसे क्रोध मान माया और लोभ होते नहीं है कि जिस कारण से उसे अनंत संसार का अनुबंध हो जाए। क्या कहते हैं, सांसारिक पदार्थ जो है उसमें तीव्र राग, तीव्र स्नेह मैंने तीव्र प्रेम, तीव्र प्रीति, तीव्र राग हुए बिना ऐसे क्रोध मान माया लोभ नहीं होता कि जिस कारण से अनंत संसार का अनुबंध हो जाए। बहुत चिकने परिणाम होते हैं संसारिक पदार्थ के विषय में, बहुत चिकने परिणाम होने से उसको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहने में आता है। जो जिस जीव को संसारिक पदार्थ में तीव्र स्नेह वर्तता हो उसे किसी भी प्रसंग में भी अनंतानुबंधी चतुष्कमय से कोई भी उदय होना संभवित है। तीव्र राग के वश उसको या तो लोभ हो या तो क्रोध हो या तो मान हो या तो माया हो, और जब तक तीव्र स्नेह उस पदार्थ में होता है तब तक अवश्य परमार्थ मार्ग वाला वह जीव नहीं हो सकता। कि जब तक संसारिक पदार्थ में तीव्र राग होता है वहां तक परमार्थ मार्ग हाथ में नहीं नहीं आता, परमार्थ मार्ग को ग्रहण नहीं कर सकता।
तीव्रता का माप क्या?
तीव्र रस
चक्रवर्ती को रस नहीं रहा, वो मारामारी किया
हाँ तो भी रस नहीं था, मारामारी किया तो भी रस नहीं था।
और यहाँ थोड़ा थोड़ा रुपया या थोड़ा धन आ गया
तो क्या है कि राजा को महल में इतना महत्व नहीं होता जितना महत्व झोंपड़ी में एक गुदड़ी वाले को गुदड़ी में होता है। ये तो कोई बाह्य साधन से कोई राग का नाप नहीं होता है, तो इसके पास संपत्ति ज्यादा है इसलिए राग ज्यादा है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति पूर्व कर्म के योग से है, इनके राग के कारण से नहीं है। राग तो जीव स्वयं करता है, चाहे परिग्रह कम हो चाहे परिग्रह ज्यादा हो, राग करता हो तो जीव स्वयं करता है। परमार्थ मार्ग का लक्षण यह है कि देखियो ये नाप कर लेना वो सरकार आए आपका प्रश्न का उत्तर ही आता है, कृपा बहुत है, प्रश्न उठते ही दिव्य ध्वनि जैसी बात है उत्तर मिल जाता है मां का वहां। परमार्थ मार्ग का लक्षण यह है कि अपरमार्थ को भजता भजने पर जीव सभी प्रकार से कायर हो जाए, क्या अपना आत्मा का एक कल्याण होने वाले भाव में उनको त्रास छूटे, घबराहट हो जाए, मेरा अहित हो रहा है, इसमें मेरा अहित हो रहा है, उसका उत्साह ठंडा हो जाए, कायर हो जाए मतलब क्या है डरपोक हो जाए, कायर मैंने क्या है डरपोक हो जाए, उसको भय लगता है, अकल्याण में भय लगता है, अपरमार्थ मार्ग में क्या अपना आत्मा का अकल्याण होता है, इस प्रकार के जब जब परिणाम होते हैं तो अंदर में भय होता है उसको। सभी प्रकार से कायर हुआ करें, सुख में अथवा दुख में, ऐसे नहीं दुख हुए उस वक्त नहीं, सुख में भी और दुख, सुख में मैंने क्या अनुकूलता पे संयोग में भोग उपभोग में उसका रस बढ़े तो उनको अंदर में भय हो जाता है, प्रतिकूल संयोगों में प्रतिकूलता का रस बढ़े तो भी उसको भय हो जाता है, इसमें मेरा अहित होता है, मेरा अहित होता है। उनको सब कुछ बर्दाश्त है, अपना आत्मा का एक कल्याण बर्दाश्त नहीं होता, ये इसका लक्षण है। दुख में कायरपना कदापि अन्य जीवों का भी संभवित है, परंतु संसार सुख की प्राप्ति में भी कायरपना, देखो इस सुख का नहीं अणगमवापण, क्या हिंदी में बोले अणगमवापण,
अच्छा नहीं लग रहा, आता नहीं,
अच्छा नहीं लग रहा और अरुचि इस सुख का अरुचिपना निरसपना परमार्थ मार्गी पुरुष को होता है।
लोटरी लागे तो घबराई जाए, लोटरी लागे तो घबराई जाए,
कुछ भी अपना रस तीव्र होते ही तो सावधान हो जाता है, ये नहीं ये नहीं, सीधा उसका अवलोकन चालू जागृति चालू। जितनी आत्म जागृति है उतनी ही मुमुक्षुता है, वरना रस कैसे टूटेगा, रस तो ले लेगा, रस ले लिया अनुकूल प्रतिकूलता का शास्त्र लेकर बैठ जाए, भगवान की भक्ति करने को बैठ जाए, उपवास कर ले कुछ भी कर ले, क्या फायदा इससे, कोई फायदा होने वाला नहीं।
रस कम लेना वही भक्ति है उसके,
हाँ ये अपना ये परमार्थ मार्ग की प्रवृत्ति है, वो पारमार्थिक भक्ति है। ऐसा निरसपना जीव को परमार्थ ज्ञान से अथवा परमार्थ ज्ञानी पुरुष के निश्चय से होना संभवता है। सुख में मैंने संसार की अनुकूलता में भी निरसपना, वो जीव को कब होता है तो पारमार्थिक ज्ञान होने से या परमार्थ ज्ञानी पुरुष का निश्चय होने से, पहचान होने से आ जाता है। क्या बात लिया, दो बात लिया कि जिसने अपने आत्मा को देखा उसको बार में देश पढ़ाएगा, और मूर्तिमंत आत्मज्ञान स्वरूप सत्पुरुष का दर्शन जिसने किया, पहचान किया, उसको भी बार में देश पढ़ाएगा।
सत्पुरुष व्यक्त तत्व है।
हाँ, वो तो व्यक्त है, प्रकट है, और ये भी अप्रकट प्रकट है, अव्यक्त व्यक्त है, वो बिल्कुल व्यक्त है, दशा में व्यक्त है, ये अंतरंग में स्वभाव में व्यक्त है। क्योंकि स्वभाव को तो प्रकट व्यक्त अव्यक्त प्रकट अप्रकट का विशेषण लागू नहीं होता, इसका उधर नहीं है। ऐसा निरसपना अन्य प्रकार से होना संभवता नहीं है। देखो बार में अन्य मति वैराग्य होते हैं, सब वे में निरस हमारे में वो बाड़ा लोग आते थे, उनको देखा, हमने देखा हमारे घर पर, हमारे जो ग्रांड फादर थे वो बहुत आस्तिक वृत्ति वाले थे, धर्म धर्म में आस्तिक वृत्ति वाले थे। कोई भी आवे उसको खिला दे पिला दे, कुछ हो तो दे दे, पैसे कुछ कपड़े कुछ बर्तन कोई भी, ऐसे उनके आस्तिक वृत्ति बहुत थी। तो ऐसे भी बाहर नहीं लोग आते थे, तो उनको खाने को दे तो उसकी जो तुमड़ी है ना इसमें दे दो, तो रोटी दाल चावल कोई सब्जी और अचार वो भी कुछ डालो, जितना भी डालो उसको उसका एक पिंड बना दे, उसमें थोड़ा पानी डाल करके ऐसे पीता, कोई स्वाद नहीं लेने का उसका, ऐसे जो भी दिया आहार कर ले एक साथ। लेकिन किस प्रकार का उदासीन पड़ा है, परमार्थ ज्ञान से होने वाला या परमार्थ ज्ञानी पुरुष के निश्चय से होने वाला निरसपना, उसी प्रकार का निरसपना दूसरे को नहीं आता है। ऐसा तो भाव वेरा आता है लेकिन वो यथार्थ नहीं है, वो यथार्थ नहीं है।
कोना आधार से ही मुख्य बात, कोना आधार से ही मुख्य बात।
हाँ, तो उसने अकेले नास्तिक को पकड़ी है कि हमको ये स्वाद नहीं लेना है, उसका स्वाद का हम त्याग करते हैं, पंचेंद्रिय में स्वाद स्वाद रसना इंद्रिय इसका विषय का हम त्याग करते हैं, तो खाना तो जरूरी पड़ता है तो कैसे खाना, ऐसे खा लेना बस, देखा है हमने कैसे वो लोग खाते हैं, ऐसे ऐसे त्याग करते हैं। कि वो कोई निरसपना वास्तविक नहीं, भीतर में आत्मा का जो चैतन्य रस है उसमें रस जम जाए और इसलिए बाहर से उदासीन हो जाए, ये वास्तविकता इसकी है। नास्तिक की कीमत अस्थिपूर्वक होती है, क्या ग्रहण किया तो नास्तिक हुआ, आत्मस्वरूप का ग्रहण हुआ तो नास्तिक बराबर है, आत्मस्वरूप का ग्रहण किए बिना नास्तिक किया तो वो नास्तिक और त्याग बराबर। दिगंबर संप्रदाय में त्याग को मानते हैं, समझते नहीं, क्या करते कि नहीं करते, लेकिन क्या ग्रहण किया त्याग किया तो वो तो समझो त्याग कर दिया है, त्याग तो किया, ऐसा चलता है। ऐसा व्यापार में तो बहुत होशियार लोग हैं, ये लोग भी धंधा व्यापार करते तो कितनी होशियारी रखते हैं उसमें, पर इसमें तो बिल्कुल भागो समझो, कोई बुद्धि नहीं चला तो देखे थे ना सोनागिर में बहुत कुछ लोग आए थे, त्याग का इतना महत्व है। मूर्ति दिगंबर महादशा से त्याग तो करे से ना, त्याग तो किया मैं उसने, अरे क्या ग्रहण करके त्याग किया वो तो देखो। परमार्थ ज्ञान से अपरमार्थ रूप ऐसा इस संसार को जान करके पीछे उस प्रत्येक तीव्र ऐसा क्रोध मान माया के लोभ कौन करेगा और कहां से होगा? प्रश्न करते हैं कि परमार्थ ज्ञान से अपरमार्थ रूप ऐसा संसार को जान करके फिर इसके लिए तीव्र क्रोध मान माया लोग कौन करेगा और कहां से करेगा? तो ऐसा ज्ञान होने पर तो ये होता ही नहीं, ये परिणाम ही खत्म हो जाते हैं ना। ये जो अनंतानुबुद्धि के परिणाम थे ऐसे परिणाम रहते नहीं है। संसार के विषय में भ्रांतिगतपणे भ्रांति दिशा में जाना हुआ सुख ये परमार्थ ज्ञान से भ्रांति ही लगती है, भाषित होती ही है कि ये सुख नहीं था, मुझे भ्रांति होती थी कि ये सुख है, वास्तव में ये सुख था ही नहीं। वो स्पष्ट परिणाम होते हैं कि जिस जिस विषय में मुझे सुख लगता था वो तो मेरी भ्रांति थी, वास्तव में वहां सुख था ही
नहीं।
तो सुख नहीं था वहां सुख की भ्रांति, जहां सुख नहीं दिखता है वहां सुख की भ्रांति कैसे हो सकेगी? जैसे रस्सी में सांप देख लिया था तो भय हुआ, अब पता चल गया कि वो रस्सी है तो सांप का भय लाओगे कहां से, होगा कहां से, कर सकते क्या? नहीं हो सकेगा, तो परिणाम ला ही नहीं सकते। ऐसे भ्रांतिगत दशा में जो सुख का रस आता था तो निर्भ्रांत दशा में वो सुख का रस आ सकता
नहीं।
इतना स्पष्ट परिणाम हो जाता है ज्ञानी को सुख दुख के विषय में। शास्त्रकार तो वहां तक लिखते हैं कि सौधर्म इंद्र है, ज्ञानी है, उनको जब इंद्र सभा का समय होता है तो इंद्रासन पर जाने का उसको विकल्प आता है कि अभी इंद्रासन पर जा करके बैठा है, सभी देव की सभा भरी हुई है, फिर वो देवों का नाथ है, उनका राजा है, तो वो आता है तो पहले तो उसको विकल्प होता है कभी इंद्रासन पर बैठने का है, तो उसको इस वक्त दुख होता है, सुख नहीं होता है। देवी आसन है, इतना सुशोभित आसन है और बड़े बड़े देव उसकी तैनात में खड़े हैं, लेकिन उसको वहां बैठने में जो विकल्प है वो दुखदायक लगता है। दूसरों को ऐसा लगता है नीचे पुण्य वाले जो मिथ्या दृष्टि देव है, क्या पुण्य है, क्या इसका पुण्य है, अगर हमको ऐसा मिल जाए, हमको ऐसा हो जाए, ऐसा उनको रहा करता है, वो दुख समझता है। ये विकल्प दुखदायक, ये विकल्प सुखदायक
नहीं
है, ऐसा अनुभव करता है। तो रस कहाँ से आएगा? फिर रस कहाँ से आएगा?
एक भाव का गानी हो,
एकांत में एकांत रस, गानी से शायद से इंद्र इंद्राणी दोनों एकांत है, दोनों एकांत है। कितने हैं? कितने तीर्थंकरों के पंच कल्याण मनाते हैं? कितने अब उस बहुत बड़ा सागरों का कार्य मनुष्य लोग का ये तो कम है, कितने के मनाते हैं? बहुत से मनाते हैं, महावीर क्षेत्र में तो बहुत शब्द के जाना होता है। जिस वस्तु का मूल्य दृष्टि में से चला गया उस वस्तु के लिए अत्यंत क्लेश होता नहीं। जो निर्मूल्य वस्तु है इसके जो बच्चे लोग हैं वो कौड़ी के लिए तकरार करते हैं, बड़े कहे करेंगे क्या? तो वो बच्चे थे तो वो ही लड़ते थे, लेकिन हम बोलते कि इसमें क्या रखा है, छोड़ो। ऐसे जो है बाह्य संपत्ति के लिए जो तकरार करते हैं वो बच्चों जैसे हैं, ऐसा ही लगता है। क्या कहते हैं, जिस वस्तु का मूल्य मूल्य महिमा दृष्टि में से चला गया, उस वस्तु के लिए अत्यंत क्लेश होता नहीं। संसार में भी भ्रांति पने जाना हुआ सुख ये परमार्थ ज्ञाने भ्रांति ही भाषित होती है, वो सुख नहीं भाषित होता है। पहले वो भ्रांत अवस्था में सुख मालूम पड़ता था, तो भ्रांति मालूम पड़ती है। ये कोई भ्रांति है, उसका कोई नाम निशान भी वहां नहीं है। और ऐसी भ्रांति भाषित हुई है जिसको पीछे उसे उसका महात्म मूल्य क्या लगे, जिसको भ्रांति लगे उसमें उसका मूल्य कैसे आएगा। जब पता चला कि ये सोने का अलंकार नहीं है, ये बनावटी है, तो उसका मूल्य कैसे आएगा। तो रास्ते पे बिकता नहीं, पांच रुपए का एक चेन मिलता है, तो उतना वजन का सोने का लगेगा तो 7-8 हजार लग जावे, ये 5 रुपये में मिलता है, तो उसका कोई मूल्य आएगा नहीं। ऐसी बात हो गई। ऐसी महात्म दृष्टि परमार्थ ज्ञानी पुरुष का निश्चय वाला मुमुक्षु जीव को भी होती है, ज्ञानी को भी होती है। और ऐसी महात्म दृष्टि परमार्थ ज्ञानी पुरुष के निश्चय वाला जीव को भी होती है। जिसको ज्ञानी मिला है उसको ऐसी दृष्टि होती है, जिसको ऐसी दृष्टि हुई वही ज्ञानी, उसे ही ज्ञानी मिला है। ज्ञानी मिला इसका ये लक्षण दिया है। देखो निश्चय हो गया, ज्ञानी का निश्चय हुआ तो ज्ञानी मिला, ज्ञानी का निश्चय नहीं हुआ तो ज्ञानी नहीं मिला। तो गुरु कहते थे दादा भेगा था से माटे बुरा ओखे से वो कहीं नहीं थे, तो पूरी ले रहा से दादा भेगा था इसके इधर ज्ञानी ने पत्र मारे तो कोई पुण्य लेने वाला सीता बजा जाता भेगा था चाहिए वो कैसे तो कहीं भेगा था इसे भी कहीं नहीं हमें ये मानता हमें पता नहीं छोटे बैठा हुए नहीं किए पहचान है ना अलग पहचान है ना बहुत अलग ज्ञानी कहने से कोई ज्ञानी पहचान लिया ऐसी बात नहीं है। सोने को सोना सब बोलता है, लेकिन जो कस लगा सकता है वही पहचानता है।
ज्ञानी समझे ज्ञानी समझे नानी आज्ञा माथे चढ़ावे सेवा करे बुद्धू करे छता ही बुद्धि को
पहचान पहचान है। ये तो जिसके जेब में नोट है वो सोने का खरीदा खरीद करेगा। ऐसे समर्पण करने वाला भी क्या है, वो खर्च करता है, लेकिन खर्च करता है तो क्यों खर्च करता है, इसके पास है तो खर्च करता है। इसके पास कुछ समर्पण होने के लिए नहीं हुए तो इसको भाव तो है, पहचाने तो उसको भाव है, कोई वस्तु की जरूरत थोड़ी है, इसमें भाव की जरूरत है। पहचान तो भाव से होती है, उसका नाम कोई चीज से थोड़ा होता है। ऐसी महात्म दृष्टि परमार्थ ज्ञानी पुरुष के निश्चय वाले जीव को होती है। इसका कारण भी यही है, इसका कारण भी यही है। कोई ज्ञान के आवरण के कारण से जीव को व्यवच्छेदक ज्ञान होता नहीं, तथापि सामान्य ऐसा ज्ञान ज्ञानी पुरुष की श्रद्धा रूप से होता है। बड़ के बीज के पेठे की तरह परमार्थ बड़ का बीज यही है। देखो क्या बात गंभीर कर दिया, कि कोई ज्ञान के आवरण के कारण से जीव को व्यवच्छेदक ज्ञान होता नहीं है। व्यवच्छेदक ज्ञान मैंने क्या भेद प्रभेद वाला ज्ञान, सब भेद प्रभेद को नहीं जाने, वो कारण से चला चर्चा चले, तो ये सब भेद को नहीं जाने, वो जरूरी नहीं है कि भेद को जानना चाहिए। लेकिन सामान्य ऐसा ज्ञान, वो तो ज्ञान आत्मज्ञान का विषय में आता है, कारण सत्कर्या का। लेकिन ज्ञानी पुरुष की पहचान वाला वो ज्ञान है उसमें कोई विशेष सूक्ष्म ज्ञान का आवश्यकता हो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा प्रसंग नहीं है। बाहिक सूक्ष्म की परिस्थिति वाला ये प्रसंग नहीं है। सामान्य ऐसा ज्ञान लिया है योग्यता है अयोग्यता इन दो प्रकार पड़े जो मुमुक्षु है उसमें योग्यता हो तो वो पहचान सके तो अयोग्यता हो तो कितने भी बुद्धि विशेष हो गए तो नहीं पहचान सके। शास्त्र ज्ञान कितना भी हो जाए बुद्धि विशेष होना सकते लेकिन ज्ञानी के पहचान नहीं आ सके। पर सामान्य ज्ञान हो गए तो भी ज्ञानी पुरुष की श्रद्धारूप ज्ञान होता है पहचान से तो यह ज्ञान वड़ के बीज की तरह परमार्थ वड़ का बीज है उसको बीज का बीज ज्ञान का भी बीज ज्ञान कहा है। यह केवल को बीज ज्ञान ही कहे वो बात लिया है तो 751 में वो बात लिया ने सम्यक दर्शन का पहले स्वरूप निश्चय स्वरूप निश्चय के पहले ज्ञानी का निश्चय तो बीज तो वहां गया ज्ञानी को पहचाना वो बीज को गया तो परमार्थ हर उसमें से तनपेगा बीज यहाँ है और कोई बात में बीज नहीं है। क्या शास्त्र ज्ञान सूक्ष्म से कितना भी होगा वो बीज ज्ञान नहीं है। कितनी भी बार बार घंटा भक्ति करे ज्ञानी की भक्ति करे भगवान की भक्ति करे वो कोई बीज ज्ञान नहीं है। तो पद गाते हैं धूम लगाते हैं वो कोई बीज ज्ञान नहीं है। और मांस खमण का उपवास कर ले वो कोई बीज ज्ञान नहीं है। लाखों करोड़ों का दान देकर जैन मंदिर बनवा ले तो वो कोई बीज ज्ञान नहीं है। ये कोई बीज ज्ञान नहीं। यात्रा का संग निकाले सबको समय से कर ले जाए और अच्छा अच्छा भोजन जिमावे वो कोई बीज ज्ञान नहीं है। कुछ भी करे बीज ज्ञान एक ही है ज्ञानी पुरुष की पहचान करे उससे स्वरूप की पहचान आएगी उससे स्वरूप का अनुभव आएगा। सीधा रास्ता ये है बाकी कोई रास्ता ही वास्तव में नहीं है। ये एक ही रास्ता सीधा रास्ता है
इसकी तो चर्चा ही नहीं चलती इसकी तो चर्चा ही नहीं
चलती। सारा ग्रंथ में ये जो ये बात बार 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 शत्रु उसकी बात क्यों करते हैं कि मुमुक्षु को यहाँ से बीज बोया जाता है वरना बीज नहीं है तो अंकुर आएगा कहाँ से। मूल का अंकुर भी नहीं फूटेगा बाहर में तो एक पत्र का भी पुष्प का भी कोई अंकुर नहीं फूटेगा। मतलब सत्पुरुष की पहचान आ जाए तो ये बीज बोया जाता है। पहचान नहीं आई तो सत्पुरुष का उपदेश सुना नहीं सुना वो तो सुना अनसुना के बराबर है ये बात है। तो उसने उन्होंने सुनने वाले को परिणाम कैसा होता है कि उनके वचन के प्रति प्रीति भक्ति प्रतीति आज्ञा रुचि रूप भक्ति स्वच्छंद निरोध रूप भक्ति ऐसा परिणाम उनको होता है। वो इसकी पहचान का लक्षण दिया सर्वार्पण बुद्धि परमेश्वर बुद्धि ये सब प्रकार के जो लिए हैं तो ऐसे ही परिणाम होते हैं।
कार से पहले आप थोड़ी स्थिति करिए ना समझने को
एक भेद है कारण से परिवर्तन एक भेद है। ये भेद नु ज्ञान बताने वाले में नहीं थे क्या मुझे व्यवच्छेद ज्ञान आयो ना यहाँ एक शब्द आयो व्यवच्छेद ज्ञान कोई ज्ञान ना आवरण में लीधे व्यवच्छेद ज्ञान न थाय એટલે એવું કોઈ સૂક્ષ્મ ઉપયોગથી એને જ્ઞાન ન થાય બનવાનું છે પણ એ કોઈ ભેદ પ્રભેદનું જ્ઞાન કોઈ પ્રયોજનભૂત નથી એમ કહેવું છે
તમે શું છે
કે ખરું જ્ઞાન તો પરસુદ્ધ પર્યાયનું થતા અનુભવ થાય છે. કેમ કે કારણશુદ્ધ પર્યાય પોતે કાર્યશુદ્ધ પર્યાયનું કારણ છે.
બરોબર.
એટલે એનું અનુભવ જે જ્ઞાન છે એ તો કાર્યશુદ્ધ પર્યાયનું કારણ છે. કારણશુદ્ધ પર્યાય પણ એનું જાણપણ ભેદરૂપ જ્ઞાન છે. એ ભેદ પ્રભેદ છે એટલે એનું એટલું પ્રયોજન નથી. સંપ્રદાયમાં તો કારણ પર્યાયનો વિષય કોઈ જાણતું જ નથી. સંપ્રદાયમાં નહીં મુમુક્ષુઓમાં ક્યાં બધા બીજા મુમુક્ષુઓ છે ગુરુદેવ ના જે સંપર્કમાં નથી આવ્યા એવા જે લોકો છે એને પણ એ વિષયનું જ્ઞાન નથી. હવે જેને એ વિષય સમજવા મળ્યો સાંભળવા મળ્યો તો એને જ્ઞાન થઈ ગયું, કાર્યશુદ્ધ થઈ ગયું. જેટલા જેટલા સાંભળ્યું જેટલા જેટલા સમજ્યા બુદ્ધિવાળા બધા સારા સારા બુદ્ધિમાન માણસો બેઠા હોય છે સમાજમાં તો આ ગુરુદેવ માનું 80% તો બુદ્ધિજીવી માણસો છે 90% તો એટલે બુદ્ધિથી જ બધું કાર્ય પોતાનો આજીવિકાનો વ્યવહાર વ્યવસાય ચલાવે છે. સમજવા મળે એવા ભેદથી માટે એને જ્ઞાન થઈ જાય એવો કોઈ નિયમ નથી. કેમ કે પરલક્ષી જ્ઞાનમાં સમજાય બધું સમજાય. આગમન અનુકૂળ જેટલી જેટલી વાતો હોય એટલી પરલક્ષી જ્ઞાનમાં 11 નવપૂર્વ સુધી સમજાય અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ રહ્યો તો ન રહ્યો. તો એ 11 નવપૂર્વના ભેદ પ્રભેદો છે એ વ્યવસ્થિત જ્ઞાન છે.
બરાબર.
શું કોઈ એવા કોઈ જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી. પરમાર્થ માર્ગ કે લીધે એસે કોઈ ભેદ પ્રભેદ કે જ્ઞાન કે આવશ્યકતા નહીં હૈ. લેકિન સત્પુરુષ કી પહેચાન હૈ તો એક પરમાર્થ વર્તા બીજ ગોયા જાતા હૈ કેવલ જ્ઞાન પ્રજ્ઞા કરવા ચીજ હૈ નિર્વાણ પદ કો પ્રાપ્ત કરાઈ
ગઈ. પ્રયોજન
એ પ્રયોજન બતા વિષમે ગલતી રહે ગઈ તો પૂરી ગલતી હૈ. એ બાત
કલ્યાણ પડા રહે ગયા તો ગલતી
હૈ. હા પૂરી પૂરી ગલતી હૈ. બહુ જગ્યા એસી બાતો નહીં રખી હૈ. વડકા બીજ કી તરહ પરમાર્થ વડકા બીજ યહી હૈ એસા દિયા ઉસકો કેવલ જ્ઞાન હોને વાલા હૈ એસા દિખતા હૈ. બહુત જગહ એસી બાત આતી હૈ બહુત જગહ આતી હૈ. નિર્વાણ પદ એવી રીતે લે છે. સમીર દર્શન નથી લેતા નિર્વાણ પદ લઈ લે છે સિદ્ધાર્થ. નિર્વાણ પદ કા બીજ ઉસકો આ ગયા. અનંતાનંદ કે વિષયમાં થોડા ઓર સ્પષ્ટીકરણ હૈ. તીવ્ર પરિણામ છે. ભાવભાવ રહિતપણે છે. જ્ઞાની પુરુષ યા સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ કો ક્રોધમાન માયા યા લોભ હોતા નહીં હૈ. તીવ્ર રસ નહીં હોતા હૈ યા ભાવભાવ રહિત પરિણામ હો જાય એસે પરિણામ છે ઉનકો યે પ્રશ્ન નહીં હોતે. વો સંસાર અર્થ સંસાર કે લીએ અનુબંધ કરતા હૈ ऐसे करने करते करते परमार्थ के नाम से क्रांतिगत परिणाम से असद गुरु देव धर्म को जो मानते हैं उस जीव को भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ होता है. वो तो होता ही है क्योंकि दूसरी संसार की क्रिया प्राय अनंत अनुबंध करने वाली नहीं है परंतु માત્ર એ પરમાર્થ કો પરમાર્થ જાન કરકે આગ્રહ કરતા હૈ ઓર પરમાર્થ જ્ઞાની એસા પુરુષ કે પ્રતિ દેવ પ્રતિ ધર્મ પ્રતિ જો નિરાદર કરતા હૈ ઓર સદગુરુ દેવ ધર્મ પ્રતિ અસદગુરુવાદિક ના આગ્રહ છે. સદગુરુ સદદેવ સદધર્મ પ્રત્યે અસદગુરુ અસદદેવ ઉસકા આગ્રહ છે ઉસકે વિપરીત બુદ્ધ છે અસાધના છે ઉપેક્ષા છે જો પ્રવૃત્તિ કરતા હૈ ઓર અસત્સંગ છે ઉસકી સંસાર વાસના પરિચ્છેદ નહીં હોતી હૈ और परिच्छेद होती है ऐसा मान लेते हैं, मानकर परमार्थ प्रति परमार्थ के प्रति उपेक्षा रहती है, यही अनंतानुमंदी क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप है। ગુજરાતી હિન્દી કરું ક્રોધ માનામાં શું કહે છે, બીજી સંસારની ક્રિયાઓ ઘણું કરીને અનંતને મંદ કરવા વાળી નથી, માત્ર અપરમાર્થને પરમાર્થ જાણી આગ્રહે જીવ ભેજા કરે, પ્રયોજન ભૂતમાં ભૂલ કરે અને એનો આગ્રહ રાખે, તે પરમાર્થ જ્ઞાની એવા પુરુષ પ્રત્યે દેવ પ્રત્યે ધર્મ પ્રત્યે નિરાબર છે, એવો આગ્રહ છે, એ પરમાર્થિક પુરુષ દેવ ગુરુ ધર્મ પ્રત્યેનો અનાદર છે, એમ કહેવામાં ઘણું કરીને યથાર્થ છે, એસા કહેના ઠીક હૈ, તે સદગુરુ સદદેવ સદધર્મ પ્રત્યે અસદગુરુ આદિકના આગ્રહથી માઠા બોધથી અસદગુરુના માઠા બોધથી અસાતના એ ઉપેક્ષાએ પ્રવર્તે એવો સંભવ છે, કેમ કે એનો સંગ સદગુરુનો છે, એટલે સાચા પ્રત્યે એ ઉપેક્ષા કરશે, અસાતના કરશે, તેમજ તે માઠા સંઘ છે એને માઠો સંઘ કીધો છે, સદગુરુનો સંઘ એ માઠો સંઘ કીધો છે, તેમજ તે માઠા સંઘ છે, તેની સંસારવાસના પરિચ્છેદ નહીં થતી હોવા છતાં તેને પરિચ્છેદ માનીને તે પરમાર્થ માર્ગ પ્રત્યે ઉપેક્ષિત રહે છે, અને તે જ અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોભનો આકાર અથવા સ્વરૂપ છે, એટલે એમાં શું કહે છે કે જીવ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તતો હોય, પણ અસદગુરુને અસદગુરુના બોધથી એના પરિણામ સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્ર અને સત્પુરુષ પ્રત્યે ઉપેક્ષાવાળા નિરાદરપણાવાળા રહેતા હોય, તો ભલે મંદ પસારવાન હોય ધર્મના ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તિના કારણે, તો પણ તે અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયાનો આકાર સમજવો વિશેષ વાત કરી છે.